وملائكته كلهم أعلم بي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلو علیہ وسلم تسلیما، ٹھیک ہے. کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صلوات اور سلام پڑھی، ٹھیک ہے. تو سب نے پڑھ لیا درود شریف، ہمارے ساتھ قریب ہو جائیں گے اور اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں کیا بات ہو رہی تھی، کسی کو یاد ہے؟ جی آپ بھی تو تھے پچھلی کلاس میں، کیا بات یاد ہے؟ ہاں خوابوں، ماشاء اللہ سب کچھ یاد ہے ان کو. تو خوابوں کے بارے میں بات سے شروع کیا تھا، خواب کون سے سچے ہوتے ہیں، کون سے والے خواب کے اندر شیطان کی چیز شامل ہو جاتی ہے. پھر اذان کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور اذان کے اندر جو ڈفرینس ہے اور اقامتوں کے اندر جو ڈفرینس ہے، ان کی اقامت تھوڑی سعودی عرب میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتے ہیں اور پاکستان میں ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وہ کیوں ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ اور کچھ کہہ رہے تھے، یہودی قبائل کے بارے میں بھی بات کرنی آخر میں شروع کر لی تھی، اور کوئی چیز؟ ہاں یہودی کافروں وہ کیوں انتظار کر رہے تھے. ہاں مجھے یاد آیا آپ کی بتانے سے کہ نبی علیہ السلام کا یہ لوگ انتظار کیوں کر رہے تھے، right؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس لیے انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے تو ان نبی کے ساتھ مل کر کے یہ لوگ جو ہے نا وہ سارے دوسرے لوگوں کو شکست دے دیں گے، ہرا دیں گے، اور یہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب جو یہ آئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کا تو انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا، ان کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں. تو اب جو ہے وہ اب ان کا انتظار ختم ہو گیا. انتظار تو ابھی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے آخری نبی ان کے حساب سے تو آئے نہیں نا ابھی تک، ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن آخری نبی تو آ چکے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے نا، اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب کون آئے گا؟ اب تو آئے گا دجال، ٹھیک ہے نا. وہ دجال آئے گا، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی بالکل اسی طریقے سے انتظار کرنے کی جس طریقے سے یہ لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں، بالکل ویسے ابھی بھی انتظار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے کیسے انتظار کرتے تھے، اب کیسے انتظار کرتے ہیں؟ بغیر کسی ٹیکنالوجی کا انتظار کرتے تھے، اب ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں. ٹیکنالوجی کا انتظار سے کیا تعلق، انتظار کرنے کے لیے تو آپ کو بس ویٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں کسی ٹیکنالوجی کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہ ویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی تفصیل جو ہے وہ رہنے میں کیسے انتظار کر رہے ہیں. اچھا، اور ہم نے پچھلی کلاس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن جو ہے وہ بھی کری تھی کہ یہ جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ کوئی اپنا کوئی نئی نئی باتیں نہیں بتا رہے ہوتے، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا، نیا دین بنا لیا، نئی باتیں بتا دی، نئی اذان بنا دی، نیا نماز بنا دی، کیا کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے جو ہے وہ خوب پڑھ لکھ کر کے، خوب جو ہے نا یعنی محنتیں کر کے، انہوں نے بیسیکلی کیا بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی، ٹھیک ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی، سنت کیا چیز ہوتی ہے، یاد ہے؟ عادت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ زیادہ تر جو ہے نا اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طرح دی جاتی تھی، نماز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح پڑھتے تھے، ایسے زیادہ تر ہاتھ ایسے باندھا کرتے تھے اپنی نماز میں کہ زیادہ تر ایسے ہاتھ باندھا کرتے تھے، دونوں طریقے سے باندھتے تھے، لیکن زیادہ کیسے باندھا، ایسے باندھا کہ ایسے باندھا، یہ سنت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ باندھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی سب نے جو ہے نا وہ محنتیں کر کر کے امت کو بس یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی یہ نہیں بتایا کہ میں کہتا ہوں کہ ایسے کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں ایسے کرنا چاہیے، یہ سب میں شاید کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس طرح ہو گیا، نیٹ ورک بند نہیں ہوا کیونکہ یہ والا تو چل رہا ہے، کیا ہوا؟ اچھا موبائل پہ چل رہا ہے، وائی فائی ڈسٹریکٹ ہو گیا. امام سے وغیرہ انہوں نے سنت بتائی ہے, اور سنت بتانے کے لیے جو انہوں نے محنت کری, رائٹ, ریسرچ کری اور کتابیں بھی پڑھی, لوگوں سے بات بھی کری اور لوگوں کو دیکھا, اس پورے کے پورے پروسیس کو, اس عمل کو کیا کہتے ہیں, کیا ورڈ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اجتہاد کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, اور جو اجتہاد کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, جنہوں امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا, امام شافی نے اجتہاد کیا, تو اجتہاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, عربی زبان کے اندر کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں جو اجتہاد کرتا ہے, مجتہد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مجتہد کہتے ہیں, صحیح ہے. اچھا, تو ہم جو نماز میں طریقہ استعمال کرتے ہیں, ایسے کھڑے ہو رہے ہیں اور رکوع کرنے کے وقت جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے پھر رکوع کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی جو ہے وہ ایسے کر کے رکوع نہیں کر رہا, تو یہ سب کیا ہے, ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, ہم ان کے اجتہاد کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو مجتہدین نے اجتہاد کیا ہم اس اجتہاد کو فالو کریں, امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو انڈیا پاکستان والے فالو کرتے ہیں, امام شافی کے اجتہاد کو ایجپٹ والے فالو کرتے ہیں, اور امام احمد ابن حنبل کے اجتہاد کو کون لوگ فالو کرتے ہیں, احمد ابن حنبل سعودی لوگ فالو کرتے ہیں, کیونکہ سعودی لوگ جو ہیں وہ حنبلی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اگر کوئی کہے کہ تم جو ہے نا وہ امام احمد ابن حنبل کے اجتہاد کو فالو نہ کرو, تم امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو فالو نہ کرو, تم امام شافی کے اجتہاد کو فالو نہ کرو, بلکہ تم یہ کرو کہ جو حدیث کی کتاب ہے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اس میں حدیثیں پڑھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا, کیا کیا تھا, کیا کیا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر تم خود جو ہے نا وہ فیصلہ کرو کہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے کہ ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تھوڑے بڑے بچوں کے یہ سوال ہے, شاید چھوٹوں کے سمجھ میں نہ آئے, لیکن آ جائے تو اچھی بات ہے. تو اگر کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو فالو نہ کرو, امام شافعی کے اجتہاد کو فالو نہ کرو, احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو فالو نہ کرو, سمجھ میں آ رہا ہے سوال آپ کو, ٹھیک ہے نا, بلکہ تم بخاری شریف کو اٹھاؤ اور حدیثیں میں دیکھو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ باندھا تھا, آپ نے ایسے ہاتھ باندھا تھا, ٹھیک ہے نا, اور پھر تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیسے ہاتھ باندھنا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اچھا وہ چلے ٹھیک ہے, آپ نے جو بات بتا دی اچھی بات بتائی, لیکن ہم جو سوال کر رہے ہیں اس کا یہ جواب, ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تم جو ہے نا وہ بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف حدیثوں کی جو کتابیں ان کو پڑھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ یوں ہاتھ باندھنا چاہیے, کہ یوں ہاتھ باندھنا چاہیے, کہ یوں سر یہ کرنا چاہیے, کہ یوں کرنا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے, ہاں اگزیکٹلی, وہ شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم خود اجتہاد کرو, کہ تم خود جو ہے نا وہ مجتہد, اپنے آپ کو مجتہد سمجھ کے تم خود اجتہاد کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, وہ بیسیکلی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم امام ابو حنیفہ مجتہد جو تھے ان کو فالو نہ کرو, امام شافعی کو فالو نہ کرو, بلکہ تم خود مجتہد بن کے خود اجتہاد کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, نہیں آج کے زمانے میں سارا علم موجود ہے, آج کل تو گوگل پہ سارا علم موجود ہے, ٹھیک ہے نا, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جتنا وقت چاہیے ہوگا, جتنی جو ہے وہ برین پاور چاہیے ہوگی, اور جتنی نیکی چاہیے ہوگی, جتنا سچ چاہیے ہوگا, جتنا اخلاص, تقوی, پرہیزگاری اور بہت زیادہ علم چاہیے ہوگا, وہ علم ہم حاصل کر نہیں سکتے زمانے میں, اتنا ایفرٹ ہم ڈال نہیں سکتے, اس کے لیے عمر پوری کی پوری لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تقوی کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ہم میں سے کسی کے اندر ہے نہیں, اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے, ورنہ نالج انفارمیشن ساری اویلیبل ہے, رائٹ, ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں, بلکہ آپ تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں حدیثوں کو, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن वो तकवा नहीं है और वो वक्त नहीं है लोगों के पास कि वो खुद से मुज्तहिद बन सके। इस वजह से हमारे लिए उन्हीं को फॉलो करना यही हमारे लिए आसानी, और हमें क्या जरूरत है दोबारा से इश्तेहाद करने की। जब उन्होंने इश्तेहाद कर लिया तो भाई अब क्या जरूरत है इश्तेहाद करने की, जरूरत ही नहीं है इश्तेहाद करने की, है ना। क्या हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं है, क्या हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि उन्होंने नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो बताई है वही सुन्नत है नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बस हो गया ना यार, खत्म करो ना इसको बस, है ना, बस खत्म करो, दूसरे काम करो यार अल्लाह के बंदो, है ना। खामखा इश्तेहाद करने की बातें करते रहते हैं उल्टी सीधी, ठीक है ना, टाइम जाया करते हैं अपना भी और दूसरों का भी, ठीक है। तो ये बात है, उम्मीद है कि बड़े बच्चों को भी और बड़े लोगों को भी बात इंशाल्लाह याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना वो अजान के टॉपिक जो है वो हमने मुकम्मल कर लिया, बस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अजान वाला मामला था ये कब हुआ था, टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सारी अजान वाली जो डिस्कशन हुई थी कि कैसे नमाज नमाज लोगों को बुलाया जाएगा, ये नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ में ये कौन सा वाला टाइम था, कौन सा वाला साल था? पांचवी हिजरी थी? नहीं, पहली हिजरी थी, बिल्कुल नबी मदीना मुनव्वरा पहुंचने के फौरन बाद ही ये प्रोसेस शुरू हो गया था कि अब मस्जिद नबी बन गई है, नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे भी बन गए हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जो जो फैमिली थी वो मक्का मुकरमा से भी आ गई, अबू बकर सिद्दीक की फैमिली भी आ गई, राइट, सब कुछ हो गया ना। अब जो है वो ये डिस्कशन शुरू हुई थी कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए, तो ये फर्स्ट हिजरी की बात हो रही है, ठीक है ना। टाइम लाइन होती है ना कि भाई कौन सा वाला साल, 40th हिजरी, जिंदगी का 40वां साल, 41, 42, 43, तो अब ये कौन सा वाला साल बना, आप सोचें कि लाइफ का आपकी उम्र कब हुई, क्या हुई उस वक्त, कोई उम्र बताए नबी अलैहिस्सलाम की? 54 years, क्योंकि 53rd year के अंदर जो है ना वो सारा ये हिजरत वगैरह का मामला हुआ था, और अब जो फर्स्ट हिजरी थी ये अराउंड 54, आप सल्लम की उम्र उस वक्त 54 हो चुकी थी, ठीक है। तो फर्स्ट हिजरी की बात हो रही है, यहाँ पे आपने सही जवाब दिया, सही है। अच्छा, इस हिजरी के अंदर जो है ना, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ द हिजरा में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ठीक है। एक तो अजान का इवेंट हमने डिस्कस कर लिया ना, उसके अलावा क्या हुआ था कि इस साल में फिर एक तो ये हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा आए थे तो रास्ते में एक जगह रुके थे ना, कौन सी जगह थी मदीना के बिल्कुल बाहर, कुबा में रुके थे ना, यहाँ पे की मस्जिद बनाई थी, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, तो वहां कुबा में ना नबी अलैहिस्सलाम किसके घर रुके थे, उनका नाम था हजरत नहीं, कुबा में कुलसूम बिन हदम उनका नाम, ठीक है ना। कुलसूम बिन हदम जो थे ना, तो उनका इंतकाल हो गया, आप उन्हीं के घर पे रुके थे कुछ दिन, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से मदीना मुनव्वरा आए थे, मदीना मुनव्वरा में आते हुए रुके थे। अच्छा, एक इवेंट ये भी है फर्स्ट हिजरी का। एक और इवेंट ये हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम ने, याद है जब मक्का मुकरमा में मदीना मुनव्वरा से सहाबा आए थे, 73 साहब आए थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने बैत करी थी कि हम आपके लिए जान दे देंगे, आप मदीना मुनव्वरा आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, है ना, आप आ जाए हिजरत करके बस, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो है वो कुछ लोगों को मॉनिटर्स बना दिया था, मॉनिटर या इंचार्ज बना दिया था, ठीक है, कि तुम लोग, तुम जो है ना वो उस कबीले के इंचार्ज हो गए, तुम उस कबीले के मॉनिटर हो गए, तुम उस कबीले के, इसको कहा था नकीब, नकीब, ठीक है ना, जो रेस्पॉन्सिबल बंदा कोई बना दिया, ठीक है। तो इस तरह के आप सल्लम ने कितने नकीब बनाए थे, वो कबीलों को जब कोई मैसेज आप सल्लम की तरफ से आता था तो अब नकीब का ये काम होता था कि वो कबीले के सारे लोगों को इकट्ठा करे और उनको वो मैसेज बताए, उनको सिखाए, दीन सिखाए, नमाज पढ़ना सिखाए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये सारा काम जो था ना वो गोया के जैसे आप सल्लम के खलीफा, छोटे छोटे खलीफा बना दिए थे नबी सल्लम, कितने बनाए थे, 12, माशाल्लाह इनको याद है, 12 नकीब बनाए थे। उस वक्त हमने ये डिस्कशन करी थी कि 12 का जो नंबर है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, कहाँ कहाँ 12 का नंबर आता है, 12 नबी लोग, अच्छा, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, नहीं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, और बनी इसराइल के 12 कबीले थे, ठीक है ना, माशाल्लाह। वैसे वो बातें सारी कवर हो गई, इवन कबीलों वाली, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 12 थे तो 12 कबीले ऐसे ही तो बने थे, ठीक है ना, और 12 चश्मे भी इसी वजह से क्योंकि 12 कबीले थे। जब समंदर के ऊपर असा मारा था तो 12 रास्ते बने थे समंदर के अंदर, हर कबीले के लिए एक रास्ता। लेकिन एक और चीज बड़ी मजे की थी, 12 इस्माइल अलैहिस्सलाम के भी 12 बेटे थे, हाँ ये भी याद पड़ता है। और एक और सबसे अहम 12, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट 12, फेमस 12, बनी इसराइल के 12 कबाइल, बहुत सही आपने लिखा था बनी इसराइल के। और कोई 12 का 12 पूछते हैं, लेकिन आप करीब आ गए वैसे, क्योंकि अब जो आखिरी 12 रह गए हैं ना, उनका ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम सलाम के साथ है। वो क्या 12 कौन थे? 12 महीने, हाँ साल के 12 महीने होते हैं भाई, इतनी इंपॉर्टेंट 12 वाली चीज है वो भूल गए। नबी अलैहिस्सलाम सलाम के एक रिश्ते के लोग जो थे ना वो 12 थे। कौन सा वाला रिश्ता था वो? चचा, बल्कि चचा नहीं, चचा तो 11 थे, एक तो अबू थे ना भाई, राइट, अब्दुल मुतलिब, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के दादा अब्दुल मुतलिब के कितने बेटे थे? 12। एक नबी अलैहिस्सलाम सलाम के वालिद थे अब्दुल्ला, और बाकी नबी अलैहिस्सलाम सलाम के चचा हो गए, लेकिन टोटल 12 बेटे थे अब्दुल मुतलिब, ठीक है जी, चचा 11 थे बाकी एक, सही। तो 12 नकीब बनाए थे, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नकीब थे कबीला बनू नजार के, ठीक है, उनका नाम था हजरत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के वो लीडर थे मदीना मुनव्वरा के अंदर, ठीक है। तो उनका भी इंतकाल हो गया, ठीक है। तो जब बनी नजार के नकीब हजरत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया ना, तो बनी नजार वाले नबी अलैहिस्सलाम सलाम के पास आए कि हमारे नकीब का इंतकाल हो गया है, अब कोई और नकीब बना दीजिए, कोई और नकीब बना दीजिए जो कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, हमारा इंचार्ज बन जाए। नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हारा नकीब नहीं बनाऊंगा, तुम जो हो ना, तुम मेरे मेरे मदर के हजरत बीबी आमना, तुम उनके रिश्तेदारों में से हो, तो तुम लोग जो हो ना, तुम मेरा ननियाल हो, तुम मेरे भाई मटर्नल फैमिली हो मेरी, ठीक है, मामूज हो, भाई कजन मामूज वगैरह, ठीक है, तो तुम्हारा नकीब जो है ना वो मैं खुद होगा। नबी अलैहिस्सलाम सलाम खुद बनू नजार के नतीब बन गए, ठीक है। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि बनू नजार के नतीब का इंतकाल हुआ था, मुश्रिकीन मक्का में ना दो बड़े बड़े उनके फेमस लीडर्स थे, एक का नाम था वलीद बिन मुगीरा और एक का नाम था आस बिन वाइल, इन दोनों का भी ये भी जहन्नुम रसीद हो गया, इनका इंतकाल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये काफिर मुशरिक नबी अलैहिस्सलाम सलाम के दुश्मन होकर के मरे थे ना, तो ये जो है ना बस जहन्नुम को पहुंच गए, इनके मर गए, ठीक है। आस बिन वाइल जो थे, जो था वो अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाप, बहुत बड़े सहाबी थे जिन्होंने मिस्र फतह किया था बाद में उमर रज़ी अल्लाह के दौर में, तो ये उनका बाप था। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ फर्स्ट हिस्ट्री के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम की शादी तो निकाह तो हो चुका था हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मक्का मुकरमा, ठीक है ना, जब सदियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लम की फर्स्ट एंड ओनली वाइफ जो थी उस वक्त, है ना, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके इंतकाल के बाद जो है ना फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दो खवातीन से शादी करी थी, एक का नाम था सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है ना, और एक थी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है, निकाह हो गया था, रुख्सती नहीं हुई, ठीक है। तो अब फर्स्ट हिस्ट्री में ना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुख्सती भी हो गई, तो यानी फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, आखिरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो फर्स्ट हिजरी का लिखा हुआ है वो ये कि जब मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा में ना जो पानी लोग पीते थे, ठीक है, तो पीने के पानी जो है वो जमाने में कैसे पीते थे, कहाँ से आता था पानी? कुओं से आता था, राइट, वेल्स जो कि डिग की हुई थी, अभी हम लोग गए थे ना वहां पे एक वेल थी, ठीक है, याद है, तो कुएं खोदते थे और कुएं से जो है ना अंडरग्राउंड वाटर जो अल्लाह ताला ने रखा हो ना पानी जमीन के अंदर, बहुत बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स रखे हुए, तो कुआं खोदते हैं, कुएं खोदने से क्या होता है, आप बड़ा खोद रहे होते हैं, हत्ता कि वो जो होल आप जमीन में बना रहे होते हैं ना, वो होल जो है वो किसी ऐसे वाटर रिजर्वॉयर को जो जमीन के अंदर होता है उसके अंदर छेद कर देता है, ठीक है ना, उसके अंदर एक सुराख कर देता है, और वो इतना बारीक सा सुराख होता है क्योंकि वो तो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर ये जो आप सुराख करते हैं ना, ये सुराख हमें तो इतना बड़ा सा लगता है, लेकिन इतने बड़े होने के मुकाबले, चीज के मुकाबले में वो तो इतना, जैसे एक सुई के आपने सुराख कर दिया, ठीक है ना। अब उसमें से पानी रस रस करके कुएं के अंदर आना शुरू हो जाता है, रस थोड़ा थोड़ा सा पानी आना शुरू, इसी को वेल कहते हैं। जब ये वेल खुद जाती है तो फिर लोग ऊपर से जो है ना वो कोई डोल डालते हैं या कोई पाइप डालते हैं, उस पानी को फिर सक करके या फुल करके ऊपर निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये वेल्स का सिस्टम होता था मदीना मुनव्वरा में, वहां से पानी निकालते, लोग पानी पीते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये तो क्या, हाँ अच्छा चक्कर फोन से जी, तो मैं अभी मिस कर रहा हूँ, दो लोग होते थे क्लास के में। अच्छा तो जो वेल्स होती थी जी, ज्यूस के पास सारी वेल्स नहीं थी, जो वेल्स थी ना फ्री जो वेल्स थी उनमें आता था खारा पानी, सॉल्टिश वाटर आता था, ठीक है ना, जो कि पानी पीने के काबिल नहीं था, वो खेतों के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना, और फार्म जो जो खजूरों के बाग थे या खेत वगैरह थे वहां पे तो वो पानी डाल सकते थे, लेकिन इंसान उस पानी को पी नहीं सकते थे, क्योंकि वो पानी होता था बड़ा कड़वा सा पानी होता था, खारा पानी, जैसे समथिंग लाइक समुंदर का पानी, वैसा समुंदर का पानी जैसा, लेकिन थोड़ा सा, हाँ, सिर्फ एक वेल थी पूरे मदीना मुनव्वरा में जिसका नाम था बेरे रौमा, ठीक है ना, वो जो थी ना वो मीठे पानी की वेल थी, लेकिन उसके ऊपर एक यहूदी का कब्जा था, ठीक है ना, वो उसकी मिल्कियत में थी, वो यहूदी जो था ना वो मुसलमानों से पैसे लेता था फिर उनको पानी देता था, जैसे आजकल बॉटल वाटर आपको खरीदना पड़ता है ना, मिनरल वाटर, बॉटल वाटर, उस तरीके से वो पैसे लेकर के लोगों को पानी बेचता था। अब जब मुसलमान वहां पर आए हिजरत करके, तो सॉल्टी एंड हार्मलेस, नहीं हार्मफुल टाइप का कह सकते हैं, हार्मलेस तो नहीं है, तो वो जो था ना पैसे लेके, अब मुसलमान जो आए थे मक्का मुकर्रमा से, वो तो बहुत सारे उनमें से बहुत ज्यादा गरीब थे ना, सब कुछ छोड़ करके आ गए थे, तो अब उनके लिए मसला हुआ कि जी पैसे कैसे दें, पानी पीना, पानी तो रोजाना पीना होता है और कई कई दफा इंसान को पीना होता है, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे ना, वो बहुत अमीर थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेड करते थे, उनके कैरावान चलते थे ट्रेड के, शाम जाते थे बेच के आते थे, फिर यहाँ पे बेचते थे, बहुत अमीर थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस यहूदी से उस कुएं को खरीद लिया और मुसलमानों के लिए फ्री कर दिया, बल्कि सबके लिए फ्री कर दिया, ठीक है। हाँ उसमें डिटेल ये है कि उन्होंने जब खरीदा ना, तो यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हें जो ना वो हाफ हाफ बेचता हूँ, ठीक है, तो हाफ हाफ कुएं को हाफ कैसे करें भाई, कुएं को तो हाफ नहीं कर सकते आप, आधा तोड़ तो नहीं सकते कुएं को, कि हाफ तुमको दे दिया हाफ मैंने दे दिया। तो उन्होंने इस तरह से डील करी कि मैं तुम्हें हाफ इस तरह दूंगा कि एक दिन जो है ना ये कुआं मेरी मिल्कियत होगी, तो वो मेरे कब्जे में रहेगा, और एक दिन कुआं जो है ना वो तुम्हारे कब्जे में रहेगा, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तुम्हारे कब्जे में रहेगा, ठीक है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो तैयार हो गए, ठीक है चलो एक दिन मेरे कब्जे में एक दिन तुम्हारे कब्जे में। अब हुआ ये कि आपको याद है, हाँ जी, तो हुआ ये कि जिस दिन जो है ना वो यहूदी के कब्जे में होता था ना, तो जो पानी लेने आता यहूदी उसे कहता भाई पैसे दो फिर तुम्हें पानी मिलेगा, ठीक है, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कब्जे में जिस दिन वो होता था, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फ्री ले जाओ। तो अब लोगों ने क्या किया, अब जाहिर है कोई पैसे देने के लिए क्यों जाएगा वहां पर, ठीक है ना, तो लोग जो है ना वो सिर्फ उस दिन आते थे जिस दिन जो है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वो कुआं होता था, और उस दिन जो है ना वो खूब सारा पानी निकाल करके अपने पास स्टोर कर लेते थे, ठीक है ना, अब अगले दिन जो है उनको पानी लेने की जरूरत ही नहीं होती थी। फिर उसके बाद एक दिन बाद जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आती थी, तो फिर उसके बाद जाकर खूब सारा पानी निकाल करके अपने पास स्टोर कर लेते थे। अब यहूदी बेटा जो है ना वो देख रहे हैं यार ये क्या हो गया, मैं तो अब तक कोई बंदा मुझसे खरीद ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि यार तुम ऐसा करो ना, तुम दूसरे दिन भी मुझसे खरीद लो, तुम पूरा खरीद लो। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी ना ऐसे गनी थे, यानी माल एक होता है ना, एक बंदे के पास माल होता है, एक होता है कि माल को खर्च करने का जज्बा भी, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो खर्च, यानी उनका उनका वॉलेट भी बड़ा था और उनका दिल भी बड़ा, दोनों चीजें बड़ी, ठीक है। अल्लाह ताला ने खूब माल भी दिया था और अल्लाह ताला ने खूब बड़ा सारा दिल भी दिया था, मतलब ये कि खूब स्पेंड करते थे। उन्होंने ना उसको पैसे दे दिए दूसरे दिन के भी यहूदी को, चलो अभी तुम भी पैसे ले लो, हालांकि वो कहते नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, तुम्हारी तो मजबूरी है, मैं तुमसे फ्री में लूंगा, नहीं उन्होंने उसको पैसे दिए, खरीद दिया, अब पूरा का पूरा कुआं उन्होंने मुसलमानों के लिए फ्री कर दिया, यानी मदीना मुनव्वरा वालों के लिए फ्री कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, उन्होंने मदीना मुनव्वरा वालों की प्यास का इंतजाम कर दिया, लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइशें और मोमिनीन के ऊपर मुश्किल हालात भी आते हैं। जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई ना, तो उस वक्त जो थे ना, जो फसाद करने वाले मुनाफिकीन और जो बेचारे बेवकूफ़ किस्म के कुछ लोग बन गए थे, तो उन लोगों ने क्या किया था, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर पानी बंद कर दिया था। उनको पानी नहीं मिलता था, घर के अंदर पानी को पहुंचाने वाला इंतजाम नहीं था, तो बेचारे प्यासे थे। उसी हालत में आकर के उन बलवाइयों ने, फसादियों ने आकर के उनको शहीद किया। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है, एक बंदा नेकी का काम करता है लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ वो नेकी नहीं होती दुनिया के अंदर, बल्कि दुनिया में उसके साथ जो है ना वो उल्टा जुल्म हो जाता है, आखिरत में अल्लाह ताला उसको बेहतरीन नजर आता है। उन्होंने फिर सबके लिए फ्री कर दिया, यानी अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया पेमेंट वाला, उसको कोई अलग से क्यों शुरू हो गया। फिर वही यहूदी टाइप के जब लोग दोबारा से कब्जा कर लिया उन्होंने, फिर उन्होंने भी काम शुरू कर, पहले भी ये करते थे, दोबारा उन्होंने ये काम शुरू कर। तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े वाकयात फर्स्ट हिस्ट्री के अंदर हुए थे। अच्छा, इसके बाद सीरत के अंदर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हमने यहूदियों के बारे में कुछ और डिटेल्स पढ़नी शुरू कर दी थी, है ना। वो क्या थी कि यहूदी जो थे उनमें से कुछ लोग जो थे ना, जो कि जरा ठीक थे, है ना, इसको कहते हैं जिनकी फितरत अच्छी थी, बेशक यहूदी थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, और जो है वो खामखा की नफरत नहीं करते थे, खामखा की दुश्मनी लोगों के साथ नहीं करते थे, ऐसे भी कुछ यहूदी थे। तो इन यहूदियों के सामने जब नबी अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई हमारे बुक्स के अंदर इनकी निशानियां मौजूद हैं, है ना, और नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने तो बातचीत वगैरह कर ली ना, तो ये जो यहूदी थे ना, अच्छी फितरत वाले यहूदी, ये हो गए मुसलमान, है ना। जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, और कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन जो लोग जो थे ना वो ऐसे थे कि अंदर ही अंदर बहुत दुश्मनी रखने वाले, पीना बुग़्ज़ झूठे मक्कार, इस किस्म के जो लोग थे ना, उन्होंने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस्लाम लाने से इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन हत्ता के इतना ज्यादा कि निशानियां सारी पूरी हो जाती थी, सब यकीन हो जाता था, लेकिन फिर भी कह देते थे कि हम नहीं मानते इनको, और कोई निशानी विशानी कोई नहीं होती, इस तरह भी बोल देते थे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ना वो मुसलमान नहीं हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फिर ऐसे लोगों से बचने के लिए कि मुसलमानों की हिफाजत हो जाए ऐसे लोगों से, आप ने क्या किया कि इन यहूदियों के साथ जो है ना, नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है ना, एक वाहिदा साइन कर लिया कि तुम अगर हमें, तुम्हारे खिलाफ तुम कोई काम करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, अगर तुम तुम्हारे खिलाफ हम कोई काम करें तुम हमारे साथ कर लेना, इस तरह का एक एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो अब जो है ना, जब एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर लोग उसके पाबंद हो जाते हैं, ठीक है ना। बहरहाल इस तरह से आप ने उनके साथ एक मुआहदा कर लिया। अच्छा, किसी स्टूडेंट है ना हमसे क्लास के अलावा व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछ रहा था, तो हमने उनसे कहा था कि आप क्लास में पूछ लीजिएगा, बल्कि सीरत की क्लास में पूछ लीजिएगा। अब उन्होंने वो सवाल लिख दिया, तो उस सवाल पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बात भी करने पर आते हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, अगर बाहर से आएंगे ना दुश्मन तो तुम हमारी हेल्प करना, ठीक है ना। यहूदी तो मदीना मुनव्वरा के अंदर ही रहते थे ना, वो बेशक दुश्मन थे, लेकिन उनके साथ जब एक एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, ठीक है, तो फिर दोनों एग्रीमेंट के जो है ना वो पाबंद हो जाते हैं, अब जो है ना वो एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये एक एग्रीमेंट की एक होती है, भी आपके छोटे भी आप है ना, तो आपको ये बात नहीं समझ में नहीं आएगी। बहरहाल तो ये एग्रीमेंट कर लिया था उन्होंने इनके साथ। अच्छा, अब हम इससे पहले के सेकंड हिजरी पर आए, फर्स्ट हिजरी, फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरत हमने मुकम्मल कर लिया, अब हम आ रहे हैं सेकंड ईयर ऑफ हिजरत, उसमें बड़े बड़े इवेंट्स कुछ हुए थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ठीक है, वरना जो इन्होंने क्वेश्चन लिख करके पूछा है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लें। पहले हमने कहा था कि हम किसी भी एक इमाम ने एक बात करी है, दूसरे इमाम ने दूसरी बात करी है, ठीक है ना, किसी एक मसले के अंदर, तो उसमें ना फिर हम जो है ना वो मेजॉरिटी को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमसे मुराद हम कौन है, जो आलिम नहीं है, ठीक है ना, जो फकीह नहीं है, जो मुज्तहिद नहीं है, हम कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी किस तरह किस साइड पर है ये मालूम करना भी गैर आलम जो होता है ना, जो नॉन आलम होता है, उसके लिए मालूम करना भी मुमकिन नहीं होता कि मेजॉरिटी किस साइड पर है। अब मेजॉरिटी से क्या मुराद है आपकी, कौन मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ अगर आप हर मसले के अंदर इस तरह देखना शुरू हो जाएंगे कि कितने इमामों ने इस मसले के अंदर कौन सी वाली बात करी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये भी जो है ना बेसिकली आप सेल्फ इज्तिहाद का एक प्रोसेस शुरू कर दें, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है ना फिर वो पिक एंड चूज वाला मसला शुरू होता है, कभी आपने कभी इसके इश्तिहाद को फॉलो कर लिया, कभी इसके इश्तिहाद को फॉलो कर लिया, कभी इसके इश्तिहाद को फॉलो, इसके अंदर एक तो पिक एंड चूज वाला मसला है, और एक असल जो मसला है ना इसके अंदर वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, जरा बड़े होकर के अगर आप इंशाल्लाह किताबें वगैरह पढ़ेंगे ना, इल्म की किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे उसूल इज्तिहाद, ठीक है ना, उसूल फिका, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, ठीक है ना, ये जो इमामों ने जो ये इज्तिहाद किया ना कि वो फलाना जो बता रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लम की सुन्नत ये थी, कोई दूसरे ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लम की सुन्नत ये थी, ठीक है, तो वो जो बताते थे ना वो बाकायदा उनके पास फॉर्मूलाज थे, उसूल थे, उन उसूलों से वो अपना इज्तिहाद करते थे, और ये नहीं देखते थे कि बस हाँ वो या खाली वो हिस्ट्री देख रहे हैं कि हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा है, ऐसा ऐसा, उनके पास बाकायदा प्रिंसिपल्स, उसूल, फॉर्मूलाज थे, ठीक है, तो हर इमाम का अपना एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो जब आप किसी इमाम को फॉलो करते हैं ना तो दरअसल आप सिर्फ जो है वो उनकी बताई हुई पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, असल में आप उनके उसूल को फॉलो कर रहे होते, उसूल इज्तिहाद को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से ना इतना आसान नहीं है ये चीज कि जी इसमें आपने मेजोरिटी देखी तो आपने मेजोरिटी को फॉलो, तीन इमामों को देख लिया, इस तरह आपने उसको फॉलो कर लिया, एक इमाम को छोड़ देगा उसको फॉलो कर लिया, ये भी जो है ना फिर वो वही होती है नफ्स परस्ती की एक शक्ल है आपके, चलें ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वाली डिस्कशन है ना, थोड़ा सा ये बात पे छोड़ रहे हैं जी, हम फिर नफ्सी को फॉलो, ठीक, अच्छा, तो इन्होंने सवाल जो पूछा था ना वो ये था कि काबतुल्ला जैसे कि हम अभी देखते हैं ना कैसा है काबतुल्ला, कि बिल्कुल स्क्वेयर्ड, स्क्वेयर्ड का मतलब चारों तरफ से सेम, ठीक है, सेम उसकी डायमेंशन है, सही, और काबतुल्ला के अंदर कितने दरवाजे हैं, एक दरवाजा है, ठीक है ना, लेकिन जैसा काबतुल्ला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था क्या वो ऐसे ही था, ऐसा नहीं था, क्या डिफरेंस था उसके अंदर, काबतुल्ला के अंदर दो दरवाजे थे पहली बात, और छत नहीं थी, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त छत नहीं थी उसमें, और स्क्वायर नहीं था, है ना। दाऊद भाई भी यही बता रहे थे कि वो स्क्वायर नहीं था बल्कि वो रेक्टेंगल था, राइट। दो साइड से वो ज्यादा लंबा था, ठीक है, और दो साइड से जो है वो, तो आज जो आप हतीम देखते हैं ना काबतुल्ला के बाहर, ठीक है, वो हतीम ऐसे है ना, डी शेप्ड है, ठीक है, नहीं वो डी शेप्ड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। असल में हतीम जो है ना वो बेसिकली बस इतना सा यूं है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो काबतुल्ला को अगर आप थोड़ा सा और बड़ा कर लेना तो हतीम फिर काबतुल्ला के अंदर है, वो काबतुल्ला का हिस्सा है, ठीक है ना। तो काबतुल्ला रेक्टेंगल था ओरिजिनली, स्क्वायर नहीं था, तो उन्होंने स्क्वायर क्यों बना दिया था, रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया फिर, इतना पैसा नहीं था आप, है ना। काबतुल्ला जो है वो टूट गया था असल में, सैलाब का पानी आता था, आग भी लग गई थी एक दफा, तो उसकी दीवारें वगैरह टूट गई थी, तो जो कुरैश मक्का थे उन्होंने फैसला किया कि हम इसको रीबिल्ड करते हैं। लेकिन रीबिल्ड करने के अंदर उनको जो है ना वो लकड़ी चाहिए थी खरीदना, उनको खरीदना पड़ा लकड़ी, है ना। तो लकड़ी खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे, हलाल पैसे नहीं थे, हराम पैसे तो बहुत थे, हलाल इतने नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई हम हलाल पैसे से बनाएंगे, हराम पैसे से नहीं बनाएंगे, तो चलो हम काबतुल्ला को छोटा बना देते हैं, बड़ा नहीं बनाते, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा काबतुल्ला बनाने की बजाय उन्होंने इतना बड़ा काबतुल्ला बना दिया, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है ना वो एक दरवाजा जो है उसको बंद कर दिया और सिर्फ एक दरवाजा खुले रखा, और हाँ भाई होता था बिल्कुल आराम आराम होता, मतलब किसी की गर्दन पकड़ करके यूं करके दबाने से जो पैसा मिलता है ना वो उस जमाने में भी हराम था, ठीक है। और झूठ बोल करके आप किसी से पैसा हासिल कर लें तो वो उस जमाने में भी हराम था, ठीक है। तो हराम पैसा इनके पास था लेकिन हलाल नहीं था, तो उन्होंने काबतुल्ला को छोटा बना दिया, जी। नहीं, दूसरे दरवाजे के निशान बने हुए, आप अगर इस तरफ से जाए ना बिल्कुल जो जिस तरफ दरवाजा है ना काबतुल्ला का उसके बिल्कुल पिछली साइड पे अगर आप जाए, और अगर गिलाफ काबा ना हो, गिलाफ काबा कभी उतार लेते हैं ना वो चेंज करने के वक्त, ठीक है ना, तो उस वक्त अगर आप जाके देखे ना तो वो दीवार के ऊपर बाकायदा ऐसे निशान बने हुए पूरे दरवाजे, ठीक है, लेकिन दरवाजा नहीं है, निशान बना हुआ है, दरवाजा नहीं है, ठीक है। खिलाफ माशाल्लाह, उम्र रजा भी इसी तरीके से कपड़ा उठा करके अंदर घुस गए थे एक दफा, उमर फारूक अदा ने भी ऐसे ही किया था जी। अच्छा, उन्होंने दूसरा दरवाजा बंद इसलिए कर दिया कि पहले क्या होता था कि लोग है ना एक दरवाजे सेंटर होते थे और दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। जब कुरैश मक्का ने काबतुल्ला को बनाया ना तो उन्होंने उसके अंदर एक तो ये तब्दीली करी कि उसको रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बना दिया, और उन्होंने एक दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने एक और काम किया कि नहीं एक और भी काम किया, ठीक है, कि ये जो एक दरवाजा उन्होंने खुला छोड़ दिया ना जो कि अभी भी है, इस दरवाजे को उन्होंने ऊंचा बना दिया, ठीक है ना। पहले ये था जमीन के लेवल के ऊपर, आसानी से लोग उसके अंदर एंटर हो जाते थे, अब इन्होंने इसको ऊंचा बना दिया। इसलिए बना दिया ऊंचा कि वहां पर ना फिर इनका एक बंदा कोई खड़ा रहेगा, कुछ इस किस्म का उन्होंने कोई अपना कोई गार्ड शार्ड ऐसा कोई रख दिया कि हर कोई जो है ना वो आसानी से एंटर ना हो सके, उसको सीढ़ी की जरूरत पड़े, राइट। पहले जब जमीन में होता था तो यूं चलते हुए आप एंटर हो जाए, दरवाजा बंद नहीं किया था कोई गार्ड वार्ड, बल्कि शायद नहीं था गार्ड वार्ड नहीं था, हाँ सीढ़ी की जरूरत पड़ती थी, और सीढ़ी ये सिर्फ उस शख्स को देते थे जिसको ये चाहते थे कि एंटर हो, जिसको ये नहीं चाहते थे उसको सीढ़ी नहीं देते, ठीक है। तो अब इनकी इजाजत के बगैर कोई काबतुल्ला के अंदर एंटर नहीं हो सकता था, असल में ये चाहते थे कि हमारी इजाजत के बगैर कोई एंटर ना हो। उन्होंने एक दरवाजे को बंद कर दिया और एक दरवाजे को ऊंचा बना दिया कि जी मुश्किल हो जाए, बहुत लंबी डिस्कशन है। खैर, फिर क्या हुआ कि काबतुल्ला इसी तरीके से था, नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा फरमाया आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने कि आयशा अगर जो है ना कुछ रीजंस ना होते ना, वो रीजंस अभी नहीं डिस्कस करें, अगर कुछ ऐसे रीजंस ना होते ना तो मैं क्या करता कि मैं इस काबतुल्ला को जो है ना वो तोड़ देता, काबतुल्ला को तोड़ देता यानी तोड़वा देता अपने साहबा से, और फिर मैं इस काबतुल्ला को फिर से बनाता जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, दो दरवाजों के साथ और रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, ठीक है ना। लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं ये नहीं कर रहा, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ठीक है। लेकिन ये बात जो है ना सब लोगों को पता नहीं थी, ठीक है, कुछ लोगों को पता था। एक सहाबी जिनको पता थी ये बात, वो कौन थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला, ये कौन थे, भांजे थे किसके, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ये भांजे थे, उनकी बहन अस्मा के बेटे थे ये, ठीक है ना। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला के सामने तो नबी रसूलुल्लाह ने बात करी थी ना कि मेरा अगर बस चलता तो मैं तोड़ देता, फिर मैं ऐसे बना लेता। अब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात अपनी बहन को भी बता दी होगी, अपने भांजे को भी बता दी होगी, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला को ये बात पता थी कि नबी रसूलुल्लाह सल्लम की ये ख्वाहिश थी। लेकिन उस जमाने में मक्का मुकरमा के लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए, फतह मक्का की बात हो रही है, ठीक है, नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, अभी वो पक्के ऐसे मुसलमान नहीं बने थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी वजह से जो है ना काबतुल्ला को नहीं तोड़ा, ठीक है। लेकिन बाद में तो फिर लोग पक्के मुसलमान बन गए, है ना, मुसलमानों की हुकूमत बन गई, खिलाफत राशिदा, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी रतान, अली रतान, ऐसे बड़े बड़े फतूहात हो गई, सब पक्का हो गया ना उसके बाद, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ना एक वक्त आया जबकि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला जो है ना वो खलीफा बन गए मुसलमानों के, ठीक है ना। और मक्का मुकर्रमा जो था वो वहां पे रहते थे, मक्का मुकर्रमा उनका कैपिटल सिटी बन गया, ठीक है ना, जैसे दारुल हुकूमत कहते हैं ना किसी हुकूमत का, तो मक्का मुकर्रमा उनके कैपिटल सिटी था, वो मक्का मुकर्रमा में रहते थे। अब उनको वो बात याद थी जो उनकी खाला ने उनको बताई थी, राइट, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा अगर बस चलता तो मैं इसको तोड़ करके उस तरीके पे बना देता। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु चूंकि अब खलीफा बन चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काबतुल्ला को तोड़वाया और उसको रीबिल्ड किया बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर जैसे उन्होंने बनाया था, ठीक है। अब काबतुल्ला ऐसे बन गया, ठीक है, फिर क्या होगा, अच्छा बता रहे हैं ना, वो और बात है, लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया ना, तो नबी रसूलुल्लाह की ख्वाहिश थी। Did the Prophet sallallahu alaihi wasallam have a son named Ibrahim? Yes. कुफार की अगर मौत हो जाए तो क्या इंतकाल हो गया, नहीं कहना, कहना है क्या, नहीं कह भी सकते हैं, लेकिन वो जरा इज्जत वाली बात होती है, भाई इनका इंतकाल हो गया, इज्जत की बात होती है, इस वजह से कह सकते हैं इंतकाल हो गया, ठीक है, मना नहीं है। Sir, can you send or say in a class or have a separate session for details about four imams, please? ये पिछली क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना इंशाल्लाह, तो उसमें आपको ये डिस्कशन हो भी जाएगी, और उसके अलावा आप खवातीन की क्लास में हैं तो उसमें भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर, इंशाल्लाह उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा, तो फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि काबतुल्ला को तोड़ के नया काबतुल्ला की इमारत बना ली, फिर क्या हुआ, जी हाँ, उसने दो दरवाजे बना दिए, उसको रेक्टेंगुलर बना दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे ना, उनकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ मुखालफत हो गई, कुछ दुश्मनी हो गई कुछ और मुसलमानों के साथ जो कि शाम में थे, सीरिया के अंदर थे, ठीक है ना। तो सीरिया में जो लोग थे ना उन्होंने भी अपनी खिलाफत डिक्लेयर कर दी थी, वो भी वो खलीफा है मुसलमानों के, ठीक है। अब जो है ना दो खलीफा हो गए, एक सीरिया के अंदर खलीफा है और एक खलीफा कहाँ पर है, मक्का मुकर्रमा में, ठीक है ना। ये जो थे ना ये सहाबी रसूल भी थे और ये सही भी थे, लेकिन वो लोग जो थे ना उन्होंने कहा था कि मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारे हाथ पे बैत कर ली है, ठीक है ना। तो अब ये अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत को हम नहीं मानते, तो वहां का जो खलीफा था ना मरवान बिन अब्दुल मलिक या मलिक बिन अब्दुल मरवान बिन अब्दुल मलिक आज उसका नाम था, ठीक है, अब्दुल मलिक बिन मरवान, हाँ, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने क्या किया कि अपना एक गवर्नर जो था ना हिजाज का, जो उसका गवर्नर था उसका नाम क्या था, बड़ा मशहूर, हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि तुम जाओ और अब्दुल्ला बिन जुबैर को जो है ना वो खत्म करो। उसने जो अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया है और वहां पे जो है ना वो बादशाह, वो मतलब खलीफा बन के बैठा हुआ है, उससे लड़ाई करो, उसको खत्म करो, ये खिलाफत उसने डबल खिलाफत कैसे बना दिया वहां, ठीक है ना। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है बाकायदा अपनी आर्मी को लेकर के अटैक किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर लड़ाई वड़ाई करके उनको शहीद कर दिया, ठीक है ना। عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یہاں پر. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے نا اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو ہے نا وہ اپنی خلافت کے زمانے میں کعب اللہ کو توڑ کے ایسا بنا دیا. اب حجاج بن یوسف کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ نبی علیہ السلام کی کیا خواہش تھی. ٹھیک ہے نا, اس نے جو ہے وہ خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ خلیفہ صاحب یہ جو ہے نا یہ تو کعبۃ اللہ کی شکل ہی انہوں نے چینج کر دی. تو خلیفہ نے اس سے کہا کہ حجاج بن یوسف سے کہ تم واپس ویسا بنا دو جیسے پہلے تھے. ٹھیک ہے نا, تو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو پھر سے گرایا اور پھر سے اس کو ریبلڈ کیا. کس طرح ریبلڈ کیا؟ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا, اسکوائر وتھ اونلی ون ڈور. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا یہ کعبۃ اللہ پھر اسی طریقے پہ بن گیا جس طریقے پہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا, مشرکین مکہ نے جیسے بنایا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ تفصیل اس کو پتہ ہی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے, اس کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات. بعد میں جب پتہ چلی نا خلیفہ عبد الملک بن مروان کو, جب یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی, اس وجہ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کو ایسے بنایا تھا, تو اس نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی تو میں ایسا نہ کرتا, حجاج کو حکم نہ دیتا کہ کعبۃ اللہ کو تم گرا کر کے دوبارہ سے بناؤ, میں ایسا نہ کرتا, لیکن اب مجھے پتا چل گیا ہے تو چلو اب میں یہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اب میں یہ کرتا ہوں, کعبۃ اللہ کو پھر سے گراتا ہوں, پھر سے اس کے بعد نیا بناتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بندہ جو تھا نا یہ برا نہیں تھا اتنا زیادہ, نیک اس زمانے کے خلیفہ نیک ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, اس نے کیا کیا کہ ایسا عمل کرنے سے پہلے جو ہے نا اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا بہت بڑے فقیہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام تو چوتھے کون ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے مشورہ کیا کہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو پھر سے گراؤں اور پھر سے بناؤں, تو کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو جواب دیا, یار بس کر دو اب نہ کرو, یہ ہمارا طریقہ ہے بات کرنے کا, انہوں نے تو ظاہر ایسے گیار بار نہیں کہا ہوگا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا بس اب نہ کرو, اب چھوڑ دو کعبۃ اللہ کو, کیونکہ یہ جو ہے نا اب ٹو مچ ہو گیا یار, یہ ہے نا اب اتنے ساری دفعہ وہ بھی گرا رہے ہیں, انہوں نے بنا دیا, پھر انہوں نے گرایا, انہوں نے بنا دیا, انہوں نے گرا, اب یہ جو ہے نا کعبۃ اللہ جو ہے نا پھر اب بادشاہ جتنے بھی آئیں گے نا بعد میں یہ ایک کھلونا بن جائے گا, جس کا جی چاہے گا وہ گرائے گا پھر سے بنائے گا, جس کا جی گرائے گا پھر سے بنائے گا, تو کعبۃ اللہ کو کھلونا نہ بناؤ یار, بس ہو گیا اب جیسے ہے نا ویسے ہی رہنے دو. ٹھیک ہے, اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لی اور کعبۃ اللہ کو اسی حال کے اوپر برقرار رہنے دیا, اور آج تک پھر جو ہے کعبۃ اللہ اسی حال کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی, حتیم جو ہے نا دراصل گول نہیں ہے, نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ یہ جو جگہ ہے نا ایسے کر کے ڈی شیپ میں جو جگہ ہے نا یہ سیمی سرکل, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے نا وہ کفار, یہاں پر جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا ابو طالب ہے نا اور ان کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے, یہاں ان کی مجلس ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو جو لوگ طواف کیا کرتے تھے نا کعبۃ اللہ کا, طواف جو ہے وہ ہمیشہ اس کے باہر سے کیا جاتا تھا, یہ جو سیمی سرکل ہے نا طواف اس کے باہر سے کیا جاتا تھا, نبی علیہ السلام نے بھی باہر سے ہی طواف کیا. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ جو ہاف سرکل نظر آتا ہے نا یہ ایکچولی حتیم نہیں ہے, لیکن طواف جو ہے وہ اس کے باہر سے ہی کیا جاتا ہے, اس لیے نہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے, کعبۃ اللہ کا حصہ تو صرف وہ پٹی ہے جو کہ کعبۃ اللہ کی اس طرف, یعنی اس سیمی سرکل اور کعبہ کی دیوار, جس نے نا دیوار کی طرف جس کے اوپر ایک وہ پرنالہ لگا ہوا نا اوپر, ٹھیک ہے نا پرنالہ جس کے اندر سے پانی گرتا ہے جب بارش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس پرنالے کے نیچے جو ایک پٹی ہے نا ایسی کر کے ریکٹینگولر, وہ ہے کعبۃ اللہ کا حصہ اور وہ ہے حتیم. ٹھیک ہے, باقی سیمی سرکل وہ ایکچولی حتیم نہیں ہو, کعبۃ اللہ کا حصہ نہیں ہے, کعبۃ اللہ کوئی اس شیپ میں نہیں تھا, ایسے نہیں تھا کہ ایک طرف جو نکلا ہوا ہے, کعبۃ اللہ ریکٹینگولر شیپ ہے. وہ بےچارے ان کو پتا نہیں, وہ ادھر نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, نہیں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا اس وقت ہوگا جب آپ صرف اس پٹی کے اندر نماز پڑھیں جو کہ پرنالے کے نیچے, वहां पे नमाज पढ़े वो है काबतुल्लाह की नमाज पढ़े, ठीक है, या फिर आप अंदर जाकर के नमाज पढ़े। हतीम के अंदर बड़ा अच्छा सवाल है ये खतरनाक सवाल कर दिया नहीं ऐसा कभी हमने देखा तो नहीं, मतलब तो इसी तरफ ही डायरेक्शन की तरफ ही। मैंने सुना है कि यहाँ पर हतीम में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऑपरेशन किया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पता नहीं कितना सच है। नहीं ये बात तो है, सीरत में हमने भी पढ़ी थी कि जो ऑपरेशन किया था से मुराद जो शक सदर का मामला हुआ था ना, वो भी यहीं कहीं हुआ था, इसी जगह पे हतीम के अंदर ही। अच्छा अब इसके बाद जो डिस्कशन हमारी शुरू होने वाली है ना सेकेंड हिजरी की, तो उसमें किसी को याद है कौन सा एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था? जंगे बदर, गजवाए बदर, ठीक है। तो गजवाए बदर तो फिर एक बहुत लंबा टॉपिक इंशाल्लाह चलेगा, लेकिन गजवाए बदर से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट वाकया, वो अगर कोई बताए सेकंड हिजरी। ऑनलाइन Didn't the Prophet only have two sons? हाँ तो इब्राहिम was one of them. काबतुल्ला से रिलेटेड ये हुआ थे ऑनलाइन सेकेंड हिजरी, हिजरत वो तो अटैक हो तो नबी सलाम के जिस साल पैदा हुए थे ना आप, उसको अटैक करने की कोशिश करी थी। तहवील क़िबला, तहवील क्या चीज होती है? क़िबले की डायरेक्शन चेंज हुई थी, ठीक है ना। क़िबला क्या होता है? जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा रुख नमाज में जिस तरफ होता है उस डायरेक्शन को क़िबला कहते हैं, ठीक है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम नबी बने थे और उनको अल्लाह ताला की तरफ से नमाज का हुक्म हुआ था, तो नबी अलैहिस्सलाम नमाज किस डायरेक्शन में पढ़ते थे? वो क़िबला थी, क्या थी वो? बैतुल मुकद्दस, क़िबला अव्वल, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ज्यादा मोहब्बत किसकी थी? बैतुल मुकद्दस के बजाय काबतुल्लाह, खाने काबा की ज्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ क़िबला था और इसी क़िबले की तरफ सारे नबी जो नमाज पढ़ते थे ना, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम वगैरह, राइट, ये जो नमाज पढ़ा करते थे ये प्रोवन है इवन तौरात वगैरह की किताबों से, ये लोग जो नमाज पढ़ते थे ये मक्का मुकरमा की डायरेक्शन में नमाज पढ़ा करते थे, ठीक है ना। और ये बात भी बिल्कुल प्रोवन है, यानी यहूदी भी इस बात को यकीन करते हैं, कि यकीन करते हैं इस बात के ऊपर, ईसाई भी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही काबतुल्लाह बनाया। इसके बारे में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते कि नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं, किसी और ने बनाया था, नहीं इब्राहिम जिसको कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब मानते हैं ना, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, इस बात को भी मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ने काबतुल्लाह बनाया था, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की दिल की ख्वाहिश क्या थी? कि वो काबतुल्लाह की डायरेक्शन में नमाज पढ़े, लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या था कि बैतुल मुकद्दस की डायरेक्शन में नमाज पढ़ो। तो अब नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो एक काम किया करते थे, जब वो मक्का मुकर्रमा में रहते थे क्या करते थे? वो मुताफ पे खड़े होते थे नमाज पढ़ने के लिए, ऐसे खड़े होते थे कि उनके सामने तो होता था काबतुल्ला, लेकिन काबतुल्ला की ही पीछे अगर आप स्ट्रेट चले जाए ना तो बैतुल मुकद्दस आ जाएगा, ठीक है। बैतुल मुकद्दस की डायरेक्शन कैसे पता चलती? वो डायरेक्शंस तो स्टार्स से पता चलती हैं, कि तो जमाने में के लोग तो वैसे ही एक्सपर्ट्स होते थे स्टार्स के जरिए से डायरेक्शंस पता करना, ठीक है। तो स्टार्स के जरिए से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जब एक दफा नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है ना। तो जब आपको नॉर्थ का पता चल गया तो ईस्ट जो है वो राइट साइड पर है, वेस्ट लेफ्ट साइड पर है, और साउथ जो है वो साइड पर है। जी हाँ
हाँ
बैतुल मुकद्दस में जमात करवाई थी ना नबियों के साथ, ठीक है। वैसे मेरा गुमान है मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं है कहीं पे पढ़ा हुआ कि वो जो जमात करवाई थी बैतुल मुकद्दस के अंदर वो किस डायरेक्शन में करवाई थी। वैसे तो बैतुल मुकद्दस के अंदर ही मौजूद थे, ठीक है ना। वेगली मुझे याद पड़ रहा है कि शायद पढ़ा था उस वक्त जो तहकीक करी थी ना, जब भी हमने क्लास में पढ़ाया था, कि उस वक्त भी क़िबला जो था वो मक्का मुकर्रमा की डायरेक्शन में था। मुझे याद, यानी उस नमाज का क़िबला जो था मक्का मुकर्रमा, काबा की तरफ। खैर, तो वो वाली जो नमाज थी, वो नमाज जो है वो इस वाली नमाज से मुख्तलिफ थी, क्योंकि ये जो नमाज है ये तो मेराज पर जाकर के ऊपर फर्ज हुई थी, तो उस वक्त तो ये प्रोसेस हुआ ही नहीं था। उस वक्त एक डिफरेंट नमाज थी, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से पढ़वाई थी। बहरहाल, तो वाज द क़िबला काबतुल्ला बिफोर बैतुल मुकद्दस? जी इट वाज। जब भी आपको कहा ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो नमाज पढ़ते थे वो काबतुल्ला की डायरेक्शन में पढ़ते थे, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये सब काबतुल्ला की डायरेक्शन में नमाज पढ़ते थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में रहते थे 13 साल नबूवत के, राइट, तो जो नमाज पढ़ते थे वो ऐसे पढ़ते थे कि काबतुल्ला सामने और बैतुल मुकद्दस उसकी डायरेक्शन में पीछे, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये जगह कौन सी बनती है, याद है जी, और हज अस्वद के दरमियान, रुकने इराकी और रुकने यमानी के दरमियान, श्योर मुझे याद पड़ता है, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान। खैर वो तो आजकल तो हजरत जी भी ऐसे ही बैठा करते, वही जगह होती थी रुकने यमानी और हजर अस्वद के बीच में, और वो डायरेक्शन भी यही थी कि सामने काबतुल्ला और पीछे जाए बैतुल मुकद्दस, ठीक है जी। उसमें फजीलत ये होगी कि नबी अलैहिस्सलाम के अमल की, जो कि आप एक कॉपी कर रहे हैं, आप सल्लम की कॉपी करने की तो फजीलत है ना, और कर भी आप जो है वो काबतुल्लाह की तरफ आप करने से आप कर रहे हैं। तो मक्का मुकर्रमा में तो ये अमल नबी अलैहिस्सलाम का मुमकिन था, ठीक है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, तो मदीना मुनव्वरा कहाँ पर है? मक्का मुकर्रमा नीचे है, मदीना मुनव्वरा ऊपर है, और बैतुल मुकद्दस उसके भी ऊपर है, ठीक है ना। अब या तो आप इस डायरेक्शन में नमाज पढ़े या उस डायरेक्शन में नमाज पढ़े, बिल्कुल ऑपोजिट्स हो गए ना। मक्का मुकर्रमा में तो ऐसा मसला नहीं था, वहां तो एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें आ सकती थी, काबतुल्लाह भी और वो भी। मदीना मुनव्वरा में तो बिल्कुल ऑपोजिट, वो बिल्कुल नॉर्थ की तरफ बैतुल मुकद्दस और मक्का मुकर्रमा बिल्कुल साउथ की तरफ, नॉर्थ साउथ 180 डिग्रीज का डिफरेंस हो गया जी। अब्दुल्ला के ऑपोजिट जो है, एग्जैक्ट ऑपोजिट किस तरफ, अगर आप हो तो एग्जैक्ट ऑपोजिट, दुनिया के ऑपोजिट साइड पर। अच्छा, आप यानी काबतुल्ला मक्का मुकर्रमा में, तो आप जो है जैसे क्या, बिल्कुल पहली क्लास में हमने बात करी थी, ये वाली तो खैर बात नहीं करी थी, लेकिन हमने भी बात करी थी कि बिल्कुल ऑपोजिट पर क्या है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यानी रूहानियत का मरकज और शैतानियत का मरकज, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो उसमें क़िबले की जो है ना, मुख्तलिफ उलमा में थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, कि कुछ जो है ना वो डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस जो है ना, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से फिर वो क़िबला मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। और कुछ उलमा जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो जो तरीका रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में नमाज पढ़ना है, नॉर्थ ईस्ट वैसे अमरीका में जो क़िबले की डायरेक्शन मुत्तफिक है ना उलमा के दरमियान, नॉर्थ अमेरिका में वो है नॉर्थ ईस्ट, ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हालांकि का अगर आप ग्लोब को देखें तो मक्का मुकर्रमा यहाँ बनेगा, ठीक है ना, लेकिन नमाज ऐसे पढ़ते हैं, क्यों क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो यही उलमा का इख्तलाफ है, अक्सर उलमा नॉर्थ ईस्ट के कायल हैं, कुछ उलमा ऐसे के कायल हैं। जो ऐसे के कायल है ना, वो ये कहते हैं कि जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो ऐसे पड़ता है, ठीक है, मक्का मुकर्रमा जब भी प्लेन जब आते हैं ना वहां से सऊदी अरब, तो वो ऐसे आते हैं, वो ऐसे नहीं जाते, वो ऐसे आते हैं, फ्यूल बचाना होता है ना, अभी पेट्रोल बचाना होता है, तो कम डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगे तो कम पेट्रोल लगेगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो नॉर्थ ईस्ट से पड़ता है, इस वजह से ऐसे। और कुछ उलमा ट्रेडिशनली नहीं जी, जो इजिप्ट और अल्जीरिया और मोरक्को, ये सारे जो कंट्रीज थे ना, यहाँ से जो है ना वो ट्रेडिशनली क्यों करके नमाज पढ़ते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, ईस्ट डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं। तो अमेरिका जो है ना वो भी इसी तरफ है ना, इस तरफ जो है वो अल्जीरिया है, मोरक्को है, मराकश, मोरिटानिया वगैरह, ठीक है। तो चूंकि वो भी इधर ही है, तो इस वजह से हम जो है ना वो इधर ही नमाज पढ़ेंगे, ऐसे करके नमाज पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम ऐसे करके नमाज पढ़ेंगे, हम ऐसे करके नमाज पढ़ेंगे। तो ये एक फिथिक इख्तलाफ है उलमा के दरमियान, कोई मसला नहीं, वो मेजोरिटी वैसे नॉर्थ ईस्ट के दायरे में। खैर टाइम वैसे ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम उसको करके क्लास खत्म करते हैं। तो अब जब मदीना मुनव्वरा आ गए तो किबला है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किबले की डायरेक्शन वही रखी जो नॉर्थ की थी। तो मस्जिद नबी जब बिल्ड हुई थी तो उस वक्त हमने आपको कुछ मैप का भी दिखाया था ना, याद, स्क्रीन के ऊपर दिखाया था। तो उसमें जो किबला रखा गया था वो नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन में सबसे पहले कौन सी चीज आती है मदीना मुनव्वरा में? अगर आप मस्जिद नबी से निकलें और नॉर्थ की तरफ जाए, जबल उहद आता, राइट, उहद का पहाड़ आता, तो उस डायरेक्शन में था। अच्छा, तकरीबन 16 to 17 months जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम ने इस डायरेक्शन में नमाज पढ़ी, ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके में नमाज पढ़ूं, तो इतनी ज्यादा चाहत थी, इतनी ख्वाहिश थी कि नबी अलैहिस्सलाम ना कि अल्लाह कभी दुआ करने के लिए ऐसे भी देखें, अल्लाह कुछ कर दीजिए, या अल्लाह मेरी बात सुन ले, या अल्लाह ये काम कर दीजिए, है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम जो ना ऐसे ऊपर देखा करते थे, ठीक है ना, अजीब, हालांकि दुआ मांगते हुए यूं करके दुआ मांगते हैं, ठीक है, और कभी जो है वो दुआ मांगते हैं तो यानी आंखें बंद करके दुआ मांगते हैं कभी ऐसे, है ना। ये क़िबले की डायरेक्शन की जब दुआ होती थी तो नबी अलैहिस्सलाम यूं देखा करते थे, पता नहीं क्यों देखते थे, लेकिन हमारे दिल में अभी अभी आप लोगों की बरकत की वजह से एक बात आई है कि यहाँ पर डायरेक्शन की बात थी ना, तो शायद किसी वजह से डायरेक्शन ऊपर करके देखते, क्योंकि अल्लाह ताला का अर्श किधर है, अल्लाह ताला अर्श को याद है प्रेजेंटेशन, अल्लाह ताला का अर्श तो ऊपर ही है, जहां भी आप होंगे, चाहे कैलिफोर्निया में हो, चाहे मक्का मुकरमा में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, अल्लाह का अर्श किधर है, हमेशा ऊपर, ठीक है। क्या अतरफ अर्श, तो अर्श भी तो गोल ही है, वसअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, अर्श ने जो है वो हर चीज को घेरा हुआ है, वसी है हर साइड से, वो आप प्रेजेंटेशन भूल गए दिखाई, इसके अंदर वो तरबूज वाला मॉडल है ना, तरबूज तरबूज को काटते हैं तो तरबूज बाहर से तो अंदर से है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम जो है ना वो ऊपर की तरफ देखा करते थे, तो अल्लाह ताला को पता था कि नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर क्या है, क्यों देख रहे हैं। तो दिल की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह मैं चाहता हूँ कि काबतुल्लाह की तरफ मैं रुख करके सजदा किया करूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फिर आयात नाजिल फरमाई सूरह बकरा की, ठीक है, तो हाफिज़ इकराम को आयात याद होंगी, हमें तो याद नहीं है क्योंकि हम हाफिज़ नहीं है। फरमाया तब नरा तकल्लुब वज्हका फिस्समा, तहकीक के हम देख रहे हैं आपका आसमान की तरफ बार बार देखना, ठीक है। فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, बस जरूर भी जरूर जो है ना हम फेर देंगे उस तरफ क़िबले को जहां पे कि आप चाहते हैं, जहां आपकी ख्वाहिश है ना। नबी अलैहिस्सलाम क्या थे, महबूब इलाही, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के बिलवड, है ना। और जो बिलवड होता है, जब उसके दिल में बहुत ज्यादा किसी चीज की ख्वाहिश होती है ना, तो उसका जो मोहब्बत करने वाला होता है फिर उस चीज की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। तो अल्लाह ताला ने तरबा, ए मेरे महबूब, आपके जिस चीज के अंदर खुशी है ना, हम वही कर देंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फिर क़िबले को फेर दिया, ठीक है ना, हुक्म फरमा दिया कि अब जो है ना आप काबतुल्लाह की तरफ डायरेक्शन करके नमाज पढ़ें। अच्छा, बाकी डिस्कशन अगली क्लास में, लेकिन जस्ट टू गिव अ पॉइंटर कि नेक्स्ट हमने क्या डिस्कशन करनी है, कि अल्लाह ताला को अगर चेंज करना ही था, ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला क़िबला बनाना ही था तो पहले ही बना देते, पहले जो है वो वाला क़िबला, फिर उसके बाद जो है वो ये वाला क़िबला, तो उस वाले क़िबले की क्या हिकमत थी। आज सुबह बात भी हो रही थी हिकमतों के ऊपर, उस वाले क़िबले की हिकमत क्या थी और इस वाले क़िबले की हिकमत क्या थी, क्यों ऐसा किया अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम सब्र करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी हिकमत बताई है आपने, नबी अलैहिस्सलाम का सब्र भी कि हाँ चाहत तो मेरी है कि मैं काबतुल्लाह की तरफ पढ़ूं, لیکن حکم میرے اللہ کا یہ ہے کہ میں بیت المقدس کی طرف پڑھوں. تو نبی علیہ السلام کا صبر ہے نا, اللہ تعالیٰ آزمان ہی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میرے نبی علیہ السلام کو, لیکن دکھانا ہوتا ہے لوگوں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ, جی آپ بھی تو کچھ بولیں, آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. جی بت تھے, بت تو وہ ابھی بھی تھے, جب قبلہ چینج ہو گیا اس کے بعد بھی بت تھے, بت تو ٹوٹے ہیں, فتح مکہ کے وقت جا کر کے. آیت 144, جی آیت 144. تو وجہ جو ہے, چلیں ہم تھوڑا سا پلندر چھوڑ کر یہ کلاس ختم کر دیتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے نا, وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دادا مانتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی کے اوپر ہیں, اور وہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو جو ہے نا وہ اللہ کا گھر مانتے تھے, ہے نا, بیت اللہ مانتے تھے, رائٹ, مشرکین مکہ, ٹھیک ہے. بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, اگلی کلاس کے اوپر اگلی کلاس پر چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ آپ لوگ ایسے اپنے طور پر خود بھی کچھ تحقیق کر لیے گا, اگر کتاب وتاب پڑھیں یا پڑھو سب کچھ ہے, کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ والا قبلہ پہلے بیت المقدس رکھا اور پھر بیت المقدس کو چینج کر کے بیت اللہ بنا دیا, کعبۃ اللہ بنا دیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.